जो आप लोगों से कहा गया उसमें से एक बात सही है वो मैं स्वीकार करता हूँ, वो यह है कि मेरे कोई मत नहीं और उन मतों से मैं चिपटता नहीं, उनका कोई आग्रह नहीं। परिस्थिति को देखता हूँ, समझता हूँ, उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, लेकिन प्रतिक्रिया के बाद मैं उसको तटस्थ भाव से समझने की कोशिश करता हूँ। उसी तरह से मैंने स्त्री की भूमिका को समझने की कोशिश की है। आप लोग लड़कियों को शिक्षण देने के लिए आगे जाने वाली हैं। शिक्षण का प्रयोजन मैं ऐसा मानता हूँ कि समाज में से शासन कम होता चला जाए। शिक्षण जितना अधिक होगा शासन उतना कम होना चाहिए, परंतु आज हम ऐसा देखते हैं कि शिक्षण जितना बढ़ता है शासन उतना ही अधिक बढ़ता है। और अब तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि शासन के बिना शिक्षण हो ही नहीं सकता, ऐसी स्थिति तक आज हम पहुँच गए हैं। सब जगह मांग यह हो रही है कि शिक्षण अब शासन के ही हाथ में चाहिए, गैर शासन गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके हाथ में शिक्षण नहीं चाहिए, और ये मांग सब तरफ हो रही है। शिक्षक ही ये मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी मुझे आशा स्त्रियों से होती है, तो मैं सोचने लगता हूँ कि स्त्री का सत्व किस चीज में। जापान में जब स्त्रियों का शिक्षण शुरू हुआ, महर्षि कर्वे वहां गए थे, तो जापान में स्त्रियों के शिक्षण के तीन उद्देश्य बतलाए गए। एक, स्त्री को स्त्री के नाते शिक्षण देना। दूसरा, स्त्री को नागरिक के नाते शिक्षण देना। और तीसरा, स्त्री को मनुष्य के नाते शिक्षण देना। असल में इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, स्त्री स्त्री भी है, नागरिक भी है और मनुष्य भी है। इन तीनों का शिक्षण संवादी होना चाहिए। ये तीनों अलग अलग नहीं है, परंतु हुआ ऐसा कि अब तक स्त्री को स्त्री के ही नाते शिक्षण दिया गया, नागरिक के नाते और मनुष्य के नाते शिक्षण नहीं दिया। इसलिए मैं ये सोचता रहता हूँ स्त्री का सत्व कौन सी चीज में है, पुरुष से भिन्नता किस चीज में है स्त्री की। तो मुझसे कहा गया, बहुत दफा मुझे समझाया गया कि स्त्री में प्रेम और करुणा अधिक होती है। अनुभव मुझे ऐसा नहीं, लड़की और स्त्री का दिल कच्चा होता है, कमजोर होता है। कमजोर दिल में करुणा और प्रेम रह सके ये तो मेरी समझ में नहीं है। वो तो ऐसा बर्तन है कि उसमें प्रेम और करुणा अगर भर दी जाए तो वो फूट जाएगा। कच्चे दिल में प्रेम असंभव है, तो स्त्री का प्रेम तो केवल कविताओं में और उपन्यासों में, नॉवेल्स में ही होता है, उससे बाहर नहीं होता। स्त्री में निष्ठा होती है, प्रेम नहीं होती। निष्ठा अलग चीज है, निष्ठा लॉयल्टी। पुरुष के लिए निष्ठा है, सीता में निष्ठा है, हरिश्चंद्र की तारामती में निष्ठा है। जितनी महान स्त्रियां हुई इन सब में निष्ठा बहुत है। निष्ठा के लिए वो प्राण भी दे सकती है, लेकिन प्रेम बिल्कुल अलग चीज है। बिना स्वतंत्रता के प्रेम नहीं आता। जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम नहीं है। गुलाम अपने मालिक के लिए जान दे देते थे। पन्ना धाय ने मालिक के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया। इसमें निष्ठा है, पति की चिता पर स्त्री जल सकती थी, लेकिन इसमें प्रेम नहीं। और इसको समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आनंद के कुमार स्वामी जैसे आदर्शवादियों ने सती पर पुस्तक लिखी, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है, ये तो निष्ठा की पराकाष्ठा है। निष्ठा अलग चीज है। हरिश्चंद्र ने जब अपने सत्य के लिए तारामती से कहा कि अभी इस तलवार से मुझे तेरी गर्दन काटनी होगी, तो हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ ठहरा। लेकिन तारामती तो पतिनिष्ठ ही हुई, इससे अधिक निष्ठा उसकी कुछ हुई नहीं। स्त्री ने अब तक समर्पण पुरुष की निष्ठा के लिए किया है, चाहे राम की सीता हो, हरिश्चंद्र की तारामती हो, या गांधी की कस्तूरबा। इनमें से किसी का जीवन स्वायत्त नहीं था। ऐसा पुरुष अगर पैदा होता जो स्त्री के ध्येय के लिए, स्त्री के आदर्श के लिए अपने प्राण दे देता, तो वो स्त्रीण कहलाता। उसके संसार में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। इसने तो स्त्री के लिए किया, तो स्त्री निष्ठा को लंपटता माना गया और पुरुष निष्ठा को पातिव्रत्य माना गया। ऐसे ये दो मूल्य समाज में प्रचलित हुए। अब तुम तो स्नातिकाएं हो गई हो, क्या इन मूल्यों को बदल सकती हो? जब तक ये मूल्य नहीं बदलेंगे, स्त्री और पुरुष का सहजीवन असंभव है। वो एक मकान में रहेंगे, ऐसा मालूम पड़ेगा कि वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो साथ नहीं रहते। एक बाप अपने बेटे को ले गया रानी के बाग में कि मैं तुझे बकरी और शेर एक साथ सोए हुए दिखाता हूँ। वहाँ ले गया तो पिंजरे में तो शेर ही शेर था, बकरी तो थी ही नहीं। तो बाप ने समझाया कि शेर के पेट में बकरी सो गई। तादात में एकात्मता के दो तरीके हैं। एक तरीके का नाम है सीजर का तरीका, सिकंदर का, अलेक्जेंडर का, सम्राट का तरीका। सारी दुनिया, सारा संसार उसके पेट में रहता है, यह साम्राज्य का तरीका है। दूसरा तरीका है जीसस का तरीका, साधु संतों का तरीका, वीर पुरुषों का तरीका। वीर पुरुषों के भीतर समाज नहीं रहता, समाज में उनका प्रवेश होता है। वो आज तक स्त्री पुरुष का सहजीवन शेर और बकरी के सहजीवन जैसा चला, और जब तक हम इसको नहीं बदलेंगे, दुनिया में धर्म का प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता। धर्म सहजीवन में है, एक के पेट में दूसरे के जीने में सहज धर्म नहीं, नैतिकता भी नहीं। तो पहली चीज मैं जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि लड़की लड़के के साथ जिए, प्रेम से जिए, लेकिन लड़के के भरोसे न जिए। पुरुष निर्भरता स्त्री के जीवन का मुख्य दोष है, और उसमें से जब तक शिक्षण उसको नहीं उभारता है तब तक स्त्री का शिक्षण एक अलंकार रहेगा। उसका शिक्षण और उसकी नागरिकता भी, ये दोनों अलंकार रहेंगे। और आप जानती हैं कि अलंकार जितने अधिक होते हैं संरक्षण की आवश्यकता उतनी अधिक होती है। गैर पढ़ी लिखी देहात की खेत में काम करने वाली और शहरों में कारखाने में काम करने वाली स्त्रियों को आवश्यकता नहीं होती संरक्षण, उतनी नहीं होती जितनी पढ़ी लिखी स्त्री को होती है, क्योंकि ये अलंकृत है, विभूषित है। आज की पढ़ी लिखी लड़की पहले की अपढ़ स्त्रियों से ज्यादा डरपोक है। इसका कारण है कि स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता सुरक्षित है। सुरक्षित स्वतंत्रता स्वतंत्रता है ही नहीं। इसका नतीजा है यह है कि स्त्री के जीवन में एक ही खोज है, और वो खोज है लड़के की खोज, पुरुष की खोज। पुरुष के जीवन में सत्य की खोज है, प्रेम की खोज है, वीरता की खोज है, स्वतंत्रता की खोज है, लेकिन स्त्री के जीवन में इनमें से एक भी खोज वास्तविक नहीं। हमारे जयप्रकाश जी कहा करते हैं कि दहेज का विरोध करो, दहेज का विरोध करो, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि जब तक लड़की को लड़के की खोज है तब तक वो अपनी फीस जरूर लेगा, और इसमें कोई अत्याचार नहीं। मैं एक अपने दरवाजे पर अगर पहरुआ रखता हूँ, दरवान रखता हूँ, वो अगर अपनी फीस लेता है, तो उम्र भर के लिए जो दरवान होगा और हर जगह 24 घंटे जिसको पहरा देना होगा वो अपनी फीस ले, इसमें मैं कोई अन्याय नहीं मानता। इस चीज को लड़कियों को समझ लेना। और मैंने लड़कियों से कहा कि मैंने अपनी माँ को समझाया, पत्नी को समझाया, बहन को समझाया, लड़की को समझाया और अब पोतियों को समझा रहा हूँ, लेकिन उनके गले ये चीज़ नहीं उतरी, अब तक नहीं उतरी। इसलिए इन सब के पिताओं को लड़कों की खोज में अखिल भारतीय दौरे करने पड़े, आज भी करने पड़ रहे हैं। इससे मुझे बहुत बड़ा दर्द है, इसलिए मैंने पहले अपनी माँ का नाम लिया। ऐसी माँ का बेटा होना कोई बहुत गौरव की चीज नहीं है, लेकिन यह वस्तुस्थिति है। अब इस मूल्य को बदलना चाहिए। जब तक यह मूल्य नहीं बदलेगा स्त्री मनुष्य नहीं बनेगी। वो माँ के नाते देवता बन सकती है, भगवती के नाते पूजी जा सकती है, लेकिन मनुष्य के नाते बराबरी की नहीं हो सकती। वो या तो वस्तु रहेगी या देवता रहेगी, मनुष्य नहीं बनेगी। देवी बने या वस्तु रहे, लेकिन मेरा स्वप्न यह है कि स्त्री मनुष्य बने। वो माता बनती है, लेकिन ऐसी माता नहीं बनती जो किसी की पत्नी ना हो। बगैर पत्नीत्व के माता बने, ये एक भव्य कल्पना है। स्त्री की गर्भधारणा का नाम कंसेप्शन है। कंसीव शब्द का अंग्रेजी में अर्थ है भावना करना। मनुस्मृति में भावयित्री स्त्री को कहा है, वो भावयित्री है। भावयित्री जो रक्षण करती है और भावन करती है, इसलिए अभिभावक शब्द आया। भावन का अर्थ है संरक्षण। अब स्त्री तो संरक्षण नहीं करती, वो है रक्षणाकांक्षिणी। और जब तक रक्षणाकांक्षिणी रहेगी तब तक स्वतंत्रता कैसे रह सकती है? स्वतंत्रता और रक्षणाकांक्षा ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मनुष्य में जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनके विकास का, संवादी विकास का नाम शिक्षण है। तो स्त्री में कौन सी विशिष्ट शक्ति है? कहा यह गया है कि मातृत्व है। मैं भी मानता हूं कि मातृत्व संस्कृति का गौरी शंकर है, एवरेस्ट है। लेकिन कौन सा मातृत्व? स्वेच्छा का मातृत्व। बांग्लादेश में जिन स्त्रियों पर बलात्कार हुआ उनका मातृत्व अभिशाप है, वरदान नहीं है। तो स्त्री के लिए मातृत्व वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। हमारे सर्वोदय के लोगों की एक बहुत बड़ी परिषद हुई। हमारी एक बहन हमारी परंपरा और आर्य संस्कृति का बड़ा अभिमान रखती थी, तो उन्होंने कहा कि जो स्त्री माता नहीं बनी है उसका जीवन अपूर्ण रह गया। हमारी प्रेमा बाई थी वहां, वो तो माता बनी नहीं, कभी विवाह ही नहीं किया, तो झल्ला उठी खड़ी हो गई, कहा ये विनोबा कभी पिता नहीं बने, इनका जीवन व्यर्थ बन गया। भीष्म कभी पिता नहीं बना, इसका जीवन व्यर्थ क्यों नहीं हुआ? रामदास का जीवन व्यर्थ क्यों नहीं हुआ? और हनुमान का क्यों नहीं हुआ, जिसकी तो स्त्रियां परिक्रमा करती हैं जाकर? पुरुष अगर पिता न बनने पर गौरवान्वित होता है, तो माता न बनने पर स्त्री गौरवान्वित क्यों नहीं? उसका जीवन महिमान्वित क्यों नहीं? इसका मुख्य कारण यह है कि स्त्री के जीवन में पुरुष निर्भरता है। फिर पुरुष कोई भी हो, भाई हो, बेटा हो, पति हो, पिता हो, लेकिन पुरुष की छत्र छाया में ही उसकी स्वतंत्रता ठहर सकती है, टिक सकती है। इस वस्तुस्थिति को चुनौती देनी चाहिए, चैलेंज देना चाहिए सारी तरुण लड़कियों। मैं पुरानी स्त्रियों से इसकी आशा नहीं करता, लेकिन तुम्हारे चित्र में अगर चैलेंज, चुनौती पैदा होगी, तो कम से कम तुम्हारी बेटियों में तो पैदा होगी, वो शक्ति आएगी, और ये शक्ति सहजीवन की शक्ति है। पश्चिम में वो वीमेंस लिबरेशन मूवमेंट है, वीमेंस लिब, तो वो प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया एक अलग चीज होती है। डॉक्टर ने अगर कह दिया कि शक्कर से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तो शक्कर को सामने भी नहीं आने दूं अपनी नजर के, यह प्रतिक्रिया है। तो पुरुष का बहिष्कार हम करेंगे, यहां तक वीमेंस लिब मूवमेंट गई है। इसमें से क्या होगा? क्या ऐसी दुनिया बनेगी जिसमें स्त्रियां स्त्रियां रहेंगी? दो गोलार्ध पृथ्वी के हैं ही, पूर्व गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध, दो गोलार्ध और बन जाएंगे, स्त्री गोलार्ध और पुरुष गोलार्ध, क्या ऐसा होगा? और ऐसा होगा तो क्या जीवन आनंदमय होगा? एक बात आप समझ लीजिए, जहां सहजीवन नहीं है वहां जीवन है ही, अकेले का जीवन हो ही नहीं सकता। मनुष्य का जीवन हमेशा दूसरे के साथ ही होता है, ये मनुष्य की विशेषता है। इसलिए समाज शास्त्रियों ने कहा कि मनुष्य समाजशील प्राणी है। अरिस्टोटल ने उसे पॉलिटिकल एनिमल कहा, पॉलिटिकल से मतलब राजनीतिक नहीं, सामाजिक। पॉलिटिक शब्द बना है पोलिस से, और पोलिस का मतलब है नगर। नगर में, ग्राम में दूसरे मनुष्यों के साथ जो जीता है उसे सामाजिक पॉलिटिकल कहते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते वो अकेला नहीं जी सकता। स्त्री भी अकेली नहीं जी सकती, पुरुष भी अकेला नहीं जी सकता। फिर स्त्री की पुरुष निर्भरता का कारण क्या है? स्त्री के मन में भय है। मैंने ऐसी स्त्रियां देखी हैं जो शेर से भी नहीं डरती, ऐसी स्त्रियां भी देखी हैं जो भूत से नहीं डरती, लेकिन ऐसी स्त्री अब तक नहीं देखी जो पुरुष से नहीं डरती। यानी स्त्री के लिए शेर भेड़िया और भूत से भी पुरुष ज्यादा भयानक है, और फिर भी उसकी खोज है। यह कॉन्ट्राडिक्शन है स्त्री के जीवन का, बहुत बड़ा विरोध है स्त्री के जीवन में, कि जिस पुरुष से डरती है उसी पुरुष की खोज है। पुरुष भी स्त्री से घबराता है, लेकिन किस लिए घबराता है, इसके मोह में नहीं पड़ना, इसलिए घबराता है। तो देखा होगा ना, इंद्र भेजता है कोई तपस्वी, तपस्या करने लगा तो उर्वशी को भेजो, मेनका को भेजो उसकी तपस्या भंग करने के लिए। अब ये कितनी अपमान की बात है कि किसी पुरुष की तपस्या भंग करनी हो तो स्त्री को भेजो, ये क्या शराब है, भंग है, क्या वारुणी है जो पुरुष के होश चुरा लेती है। ये जो स्त्री की भूमिका है ये असही भूमिका है, इसको सहना नहीं चाहिए। और मैं ये सब तुम तरुण स्त्रियों से इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षण यहां रुक जाता है आकर, कि वो केवल इन्फॉर्मेशन दे, जानकारी शिक्षण नहीं है, इससे कुछ अधिक है। तो वो जो शिक्षण में अतिरिक्तता है, जानकारी के अतिरिक्त जो कुछ शिक्षण में है वो आना चाहिए, और उसमें स्त्री का जीवन विकसित होना चाहिए। उससे आज स्त्री यहां तक पहुंच गई है कि अब वो अगला कदम उसका या तो फिर से चूल्हा चक्की की तरफ होगा या फिर मनुष्यता की तरफ होगा। अब इसलिए अब कहीं अब छिटक गई है स्त्री की प्रगति, यहां आकर रुक गई है। क्यों रुक गई है इसको भी जरा सोचो मेरे साथ बैठकर। मैं तुम्हारे साथ बैठकर अध्ययन कर रहा हूं, मैं कोई अपनी व्यूज अपने मत प्रकट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास वो है नहीं। हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ, पहली चिंता मुसलमानों को भी अपनी स्त्रियों की होती है और हिंदुओं को भी अपनी स्त्रियों की होती है। लड़ाई हुई, चाहे रूस और चीन की ही क्यों ना हो, जो दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, फिर भी दोनों को अपनी स्त्रियों की चिंता होगी, क्योंकि स्त्री का अपहरण होता है। पुरुष का अपहरण होगा पैसे के लिए, और स्त्री का अपहरण केवल शरीर के लिए होगा। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, और यहां तक अपहरण होता है कि राम की पत्नी का भी अपहरण होता है और श्री कृष्ण अपनी पत्नी को भी चुरा कर लाता ले जाता है। ये जो मूल्य है इसमें स्त्री मानव नहीं बनती, और अब तक हमने इसका गौरव किया है। पुरुष करे तो मैं समझ सकता हूं क्योंकि उसका उसमें स्वार्थ है, लेकिन स्त्री भी गौरव करती है कि सीता ऐसी हुई और वो तारावती ऐसी हुई, ये मेरी समझ में कभी आया नहीं। मैं अगर आप लोगों की जगह होता है तो मैं तो इनका गौरव नहीं कर सकता, मेरे मन में गौरव पैदा नहीं होता। उनके त्याग की, उनकी निष्ठा की मैं तारीफ करता, जैसे बहुत गुलामों की भी की है। राजा को बचाने के लिए सैनिक अपनी जान दे देता है, वो तो अलग चीज है, उसमें मूल्य दूसरा आ जाता है। स्त्री का मूल्य मनुष्य के नाते अगर नहीं बढ़ेगा तो आपको फिर से घर के भीतर बंद होना पड़ेगा, वो जमाना बहुत नजदीक आ रहा। और स्त्री ही मांग करेगी, इसमें पुरुष को कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आज सारी संस्थाओं के शिक्षक इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह सरकार दे, सरकार की शरणागति। जैसे आज के परिस्थिति में स्त्री पुरुष
की तरफ से क्या हो रहा है,
ये युवकों की रैली, बॉम्बे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रैली कर,
मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि मुंबई की छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की ओर से शिक्षा के प्रश्न पर और शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक रैली बुलाई जा रही है। मैं अपनी हार्दिक शुभकामना इस रैली को भेज रहा हूँ। मेरा अपना विचार है, यद्यपि मैं कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ, कि आज के यूनिवर्सिटी शिक्षा में बहुत बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे एक पानी का स्रोत है, बहता जा रहा है, जिधर जमीन नीचे है उसकी तरफ भड़कता जा रहा है। तो लड़के मैट्रिक पास करते हैं, फिर वाई में जाते हैं, बीए में जाते हैं, उनके सामने कोई खास ध्येय भी नहीं होता, शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य भी नहीं रहता। शिक्षा चूंकि शिक्षा नहीं बल्कि डिग्री जो कि थे अपने देश में नौकरियों के लिए एक आवश्यक साधन बन गई हैं, इसलिए कोई डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है जिसमें जीविका निर्वाह के लिए कोई नौकरी हम प्राप्त कर सकें। इसमें जीविका निर्वाह भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता, क्योंकि शिक्षा उसके लिए तो दी जाती नहीं और शिक्षा तो मिलती ही नहीं। शिक्षा जो होनी चाहिए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्तर की वो भी प्राप्त नहीं होती है। अभी तो जैसा मैंने पहले कहा, एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा में बैठना ऐसा एक क्रम बना है, लेकिन वास्तव में यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालयों की शिक्षा तो आवश्यक उन लोगों के लिए है जो कोई विशेष प्रकार का अध्ययन करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं और अपना जीवन उसमें ही लगाना चाहते हैं। बाकी शिक्षा जिससे हम अपने हाथों को और दिमाग को इस्तेमाल करके कुछ पैदा कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं और समाज के धन को भी बढ़ा सकते हैं, उसके लिए शिक्षा तो बिल्कुल दूसरे प्रकार की चाहिए और वो यूनिवर्सिटी शिक्षा उसको कहना नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी शिक्षा मेरी दृष्टि से तो एकेडमिक, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए और ये सब शिक्षा दूसरे जीवन उपयोगी काम सिखाने के लिए उनका दूसरा रूप होना चाहिए। कोई उसके लिए यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में इस तरह नहीं होता है, वहाँ तो यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा में ही रहना चाहते हैं, रिसर्च में, शोध में काम करना चाहते हैं वही जाते हैं और बाकी जो उद्योग धंधे में, व्यापार आदि में, व्यवसाय में जाना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा की दूसरी ही एक दिशा है, धारा है, संस्थाएं हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ यह अभी तक नहीं है और यूनिवर्सिटी शिक्षा को नौकरी का एक माध्यम मान करके उसके महत्व को और उसके मूल्य को हम गिराते हैं। जितनी जल्द इसमें परिवर्तन हो सके उतना जल्द हो आवश्यक है। इसमें छात्र युवा संघर्ष वाहिनी, दूसरे छात्र, शिक्षकों के संगठन, इन सबको मिल करके सोचना विचारना चाहिए। जिस तरह से ये चलता आया है तय कर लेना चाहिए कि अभी एक बरस चलेगा, दो बरस चलेगा, इससे आगे नहीं चलेगा, सारा रूप हम बदलेंगे। यूनिवर्सिटी की शिक्षा जिस का जो असली मूल्य है, रूप है, महत्व है, वो उसके लिए होगी होंगे और बाकी जो जीवनोपयोगी शिक्षा है उसमें ऊंची शिक्षा भी हो सकती है, विज्ञान की, इंजीनियरिंग की, कृषि की और प्रकार के व्यावहारिक विज्ञान अप्लाइड साइंसेस की, तो उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें जितना विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के सोचें विचारें उतना अच्छा होगा, और शायद सोचने विचारने के लिए मदद मिलेगी अगर एक कमीशन की नियुक्ति की जाए छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की ओर से, और बम्बई नगर के लोक समिति की ओर से। मुझे जानकर खुशी हुई है कि बम्बई के वाहिनी ने और लोक समिति दोनों ने ऐसा निश्चय भी किया है, और चंद दिनों में ही इस प्रकार के कमीशन की नियुक्ति का की घोषणा जो वो करने वाले हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं इस प्रयास की सफलता की शुभकामना करता हूँ।
नमस्कार, क्यों दूसरे को जाना है? नमस्कार, दूसरे को जाना है? यानी बचपन से विवाह का ही संस्कार उसके ऊपर किया जाता है। इन संस्कारों से उसको मुक्त करना होगा। शिक्षण का काम नेगेटिव है। जो संस्कार अब तक मनुष्यों के मन पर हो गए हैं उन संस्कारों को हटाना होगा, और हमारा आग्रह क्या है कि उन्हीं संस्कारों को हम उनके ऊपर करें। इसलिए अब तक शिक्षण इस मामले में सफल नहीं हुआ। आज के शिक्षण में और कोई दोष नहीं है इसके सिवा कि वो पुराने संस्कारों को रखना चाहता है। लड़कियों पर ये जो संस्कार है कि वो रह ही नहीं सकती है, इस संस्कार को मिटाना होगा। और इसके लिए पुस्तकें, कथाएं, बहुत सी चीजें उपयोगी हो सकती हैं। अब तक तो ऐसा हुआ है ना कि हमने उनके सामने आदर्श कभी सीता का रखा, कभी सावित्री का रखा, बहुत बहुत हुआ तो झांसी की रानी का रखा। लेकिन झांसी की रानी अगर विधवा नहीं हुई होती तो कोई पराक्रम नहीं कर सकती। उसके पति अगर जीवित होते तो उन्हीं के पीछे जाती। इतिहास ऐसा है जो स्त्री कुमारी रही या विधवा रही उसी ने कुछ पराक्रम किया। और मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जो पुरुष के साथ जिए वो भी पराक्रम कर सके। ये संस्कार है। मुझसे एक लड़की, अब तो उसको बहुत साल हो गए, मैं समझता हूँ कोई 30-35 साल हो गए होंगे, विनोबा के आश्रम में रहती है, मेरे पास आई एमए होने के बाद कि तुम मुझे संदेश लिख दो। तो मैंने लिख दिया, स्वभाव क्या आकांक्षा छोड़। अब उसकी माँ और बाप सब मेरे पास आए कि क्या तुमने लिख दिया, अनर्थ करते हो। अखबारों में चर्चा चली कि ये क्या लिख दिया। दूसरी लड़की आई, मैंने उसके लिख दिया मातृत्व की आकांक्षा छोड़। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो खटकेंगी सबको। मेरी लड़की को कोई लिख देता तो शायद मुझे भी बुरा लगता, लेकिन लड़के ने कभी आकांक्षा सौभाग्य की रखी है? आज भी मेरे जन्म वो आती हैं, लग्न पत्रिकाएं, विवाह की पत्रिकाएं, उनमें लिखा हुआ था सौभाग्य कांक्षी, उसको सौभाग्य कांक्षी कोई लिखता ही नहीं लड़के, वो क्या दुर्भाग्य कांक्षी है? ये अपने नीचे सिग्नेचर भी करती है तो भी सौभाग्यवती शोभना, और वो कुछ लिखता ही नहीं है। इतना भयानक है, इसको सोचिए, संस्कार है जो शिक्षण में आ जाते हैं। हम लड़कियों को जो पाठ पढ़ाते हैं वो यही पढ़ाते हैं, कस्तूरबा भागवड़ी क्यों, पति का सहयोग दिया, और पति ने सहयोग नहीं दिया तो वो क्यों नहीं हुआ? वो अनुगामिनी मानी गई, सहगामिनी नहीं। पुरुष की अनुगामिनी मानी गई, पीछे पीछे चलने वाली। पिताजी मेरे नहीं रहे तो मेरे तो उसकी शादी होनी थी छोटे भाई की, तो मैंने अपनी माँ से कहा कि पिताजी होते तो वो इसकी शादी करते, तू क्यों नहीं कर सकती? तो वो सारे पुरोहित कहने लगे, मुझे समझाने लगे। मैं कहा ना कि मैं धर्माधिकारी हूँ, फिर भी मुझे समझाने लगे कि स्त्री को वैदिक विधि का, वैदिक कर्मों का अधिकार नहीं है। तो पिताजी जब तक थे तब तक वो विधि करते थे और माँ सिर्फ उनके हाथ में हाथ लगाती थी, स्पर्श करती। ये जो भूमिका है सेकेंडरी भूमिका है। अब इस संस्कार को मिटाना है, ये शिक्षण करे, शिक्षण का काम है इस संस्कार को मिटाना। हर लड़के को जो पढ़ा लिखा है, अब लड़के को ये सभा नहीं है, लेकिन हर लड़की को जो पढ़ी लिखी है उसे कहना चाहिए कि पिताजी को जो अधिकार था वही माँ को होना चाहिए। और अगर इसको व्रतबंध नहीं होता है और इसकी जनेऊ नहीं पहनाई जाती है तो भाई को भी नहीं पहनानी जानी चाहिए। ये क्यों नहीं कहती है? उल्टे मैं देखता हूँ कि कॉलेज की लड़कियाँ उनकी भाई के व्रतबंध में, जनेऊ में 25-25, 50-50 हज़ार रुपया खर्च होते हैं, और वो अपनी सहयोगियों को बुलाकर मिठाइयाँ खिलाती हैं। कभी प्रोटेस्ट किया? ये कितना बड़ा अन्याय है कि वेद का अधिकार न हो, वो सारी संस्कृत की पंडिता हो, तब भी वो पुरोहित आकर वैदिक कर्म उससे नहीं कराता, रुद्र का अभिषेक नहीं कराएगा, महिम्न का अभिषेक कराएगा। ये सब उसको जो सेकेंडरी ह्यूमन बीइंग बना दिया है, गौण मानव, इसके विरोध में उसके चित्त में आप प्रोटेस्ट पैदा कीजिए, यह शिक्षण में हो सकता है। लेकिन वो नहीं होता है। मैं वो हिंगड़े में गया था, वहाँ करवे की इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ की जो सुपरिंटेंडेंट थी वो कहने लगी, यहाँ हमारे यहाँ टिकती नहीं है शिक्षिकाएँ। तो कहा क्यों? बस एक हद तक टिकती हैं, फिर शादी करके हूँ बस, ऐसे वो चली जाती हैं। तो सारा अपने गुण, सारा वैभव, सारी सारा सौंदर्य किसी पुरुष को जब तक समर्पित न किया जाए तब तक व्यर्थ है समस्या। मेरे साथ लड़कियां रहती हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत विद्वान भी हैं, बुद्धिमान हैं, हृदय से संपन्न है, लेकिन मुझसे मेरे मित्र हमेशा यही कहते थे कि कोई अच्छा सा लड़का देकर इनकी शादी कर, नहीं तो उनका जीवन व्यर्थ है। यह संस्कार है जिस संस्कार को मिटाना चाहिए। यह हीनता का संस्कार है जो स्त्री के चित्त पर बहुत छुटपन से हो जाता है, बचपन से हो जाता है, इसको हटाने की आवश्यकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं ये कहता रहा हूँ, लेकिन अब तक मेरी पोतियाँ हैं, बेटे की बेटियाँ हैं, उनके दिल में से भी ये बात नहीं गई।
चलो साथ साथ, इसमें साथ भी आता है,
शुरू करें।
जाग रे जवानी जाग, जाग रे जाग रे जवानी जाग, जाग रे जिंदगी की राह से दर्द गम कराह से, जिंदगी की राह से दर्द गम कराह से, तू न कभी भाग रे। जाग रे जवान जाग, जाग रे
जाग रे
जाग रे जवान जाग, जाग रे मिल गई स्वतंत्रता शांति की कली खिला, खड़ा है तेरे हाथ में विश्व को सुधा पिला, खड़ा खड़ा क्या सोचता प्रयोग में समय कोला, कदम कदम पे काल का पुकारता है नाग रे। जाग रे जवान जाग, जाग रे
जाग रे
जाग रे जवान जाग, जाग रे जिंदगी की राह से दर्द गम कराह से, जिंदगी की राह से दर्द गम कराह से, तू न कभी भाग रे। जाग रे जवान जाग, जाग रे
जाग रे
बड़ी मुश्किलों को पार कर, फिर भी क्या भरोसा इसका।
और कुछ न करें
बोलो।
जाग रे जवान जाग, जाग रे जाग रे जवान जाग, जाग रे जिंदगी की राह से दर्द गम कराह से, जिंदगी की राह से दर्द गम कराह से, तू न कभी भाग रे, तू न कभी भाग रे। जाग रे जवान जाग, जाग रे
जाग रे
जाग रे जवान जाग, जाग रे मिल गई स्वतंत्रता शांति की कली खिला, घड़ा है तेरे हाथ में विश्व को सुधा पिला, खड़ा खड़ा क्या सोचता प्रयोग में समय को ला, कदम कदम पे काल का पुकारता है नाग रे। जाग रे जवान जाग, जाग रे
जाग रे
जाग रे जवान जाग, जाग रे जिंदगी मिली है बड़ी मुश्किलों को पार कर, फिर भी क्या भरोसा इसका तू जरा विचार कर, जीत को पूजेंगे लोग क्या मिलेगा हार कर, झूमने लगे जहान छेड़ कोई राग रे। जाग रे जवान जाग, जाग रे
जाग रे
रे जवान जाग, जाग रे
पवन चमन में तेरी ही कुर्बान,
जवान तेरा प्यार चाहिए, तूफान को भी तेरी शक्ति का आधार चाहिए, मौत को भी हर घड़ी तेरा विचार चाहिए, दिल में रंग भर के तू मचा दे मस्त भाग रे। जाग रे जवान जाग, जाग रे
जाग रे
जाग रे जवान जाग, जाग रे जिंदगी की राह से दर्द गम कराह से, जिंदगी की राह से दर्द गम कराह से, तू न कभी भाग रे। जाग रे जवान जाग, जाग रे
एकदम फालतू,
एकदम फालतू।
पहले
चलो भाई चलो शुरू करो।
पूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, 1 2 3 संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर
चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा है।
अपने चारों ओर उठ रही आज तूफानी लहरों को,
आज तूफानी लहरों को
समझ चुनौती निकल पड़ा है आज तरुण मर मिटने को,
आज तरुण मर मिटने को
हर शहीद का बहा लहू यह बार बार दोहराता है, हर शहीद का बहा लहू यह बार बार दोहराता है,
भावी इतिहास हमारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा है।
गरज उठा आकाश प्रबल झंझा का लक्षण दिखा है,
झंझा का लक्षण दिखा है,
भ्रष्ट व्यवस्था से आतंकित अंतिम जन भी चीखा है,
अंतिम जन भी चीखा है,
बदलो अंतिम मौका है फिर सारा व्योम हमारा है, बदलो अंतिम मौका है फिर सारा व्योम हमारा है,
भावी इतिहास हमारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा।
मन ये रे ये रे तुला दे तो पैसा झाला पाऊस आला मन एक होता
एक होता
कावळा
कावळा
एक होती एक दिवशी काय झालं मोठा
होता
पाऊस आला
पाऊस आला
पाऊस कशा आला कशा पाऊस आला
दो
दो दो आणि मग कावळा आला चिवतेकडे चिवतेला काय म्हणाला चिवतेई चिवतेई हा मग चिवतेई काय म्हणाली थांब बाळाला अंघोळ घालते
म्हण थांब
बाळाला अंघोळ घालते बर चांदोमामाच गाणं म्हण चांदोमामाच गाणं म्हण चांदोमामा चांदोमामा म्हण
आराम करो
लिंबोणीच्या झाडामागे लिंबोणीचं झाड करवंदी मामाचा वाडा चिरेबंदी मामाच्या वाड्यात म्हण येऊन जा तूप रोटी खाऊन जा सगळं लक्ष दे गुड नाईट
गुड नाईट
गॉड ब्लेस यू
गॉड ब्लेस यू
हाऊ डू डू
हाऊ डू डू
कम टुमॉरो
कम करोटो
आणखी गाणं म्हणता का करू सजनी
का करू सजनी